इशिका इस समय तरुण के घर पर उसके आने का इंतजार कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ माया और तरुण ने इशिका को खो दिया था, इस वजह से वे दोनों काफी निराश हुए थे। मजबूरी में उन्हें वापस अपने घर लौटना पड़ा। रूही पूरे रास्ते रोती रही, इस वजह से माया इरिटेट हो रही थी। घर के पास आते ही जब उन्होंने घर का मेन गेट खुला देखा तो माया ने आंखें बड़ी करके हैरानी से कहा, हे भगवान, इस घर का दरवाजा खुला कैसे है? कहीं चोरी तो नहीं हो गई है? कमॉन मॉम, ये हमारा घर नहीं है। अगर चोरी हो भी गई है तो चोरों के पास चुराने को कुछ नहीं मिलेगा, तरुण ने सार्कास्टिकली सर हिलाकर कहा। उसने रूही को अपनी गोद में ले रखा था। तरुण अंदर जाने को हुआ तभी माया ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हल्की घबराहट के साथ बोली, अरे ऐसे अकेले मत जाओ, अंदर अभी भी वो चोर हुआ तो? माया तरुण से बात कर रही थी तभी उसकी नज़र सामने की तरफ पड़ी तो उसका मुंह हैरानी से खुला रह गया। सामने इशिका खड़ी थी जो बिल्कुल ईशानी की तरह लग रही थी। पहले माया हैरान हुई थी, फिर उसका मुंह बिगड़ गया। उसने सिर हिलाकर कहा, अब ये मनहूस यहाँ पर क्या कर रही है? जब भाग ही गई थी तो वापस आने की क्या जरूरत थी? हद हो गई, ये लड़की इस घर में आई है तभी हमारी जिंदगी में फिर से मनहूसियत छा गई और इतना अच्छा मौका हमारे हाथ से निकल गया। हमेशा की तरह माया ईशानी को भला बुरा सुनाने लगी। इशिका चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। वहीं ईशानी को देखकर तरुण का कोई खास रिएक्शन नहीं था। वो आगे आया और रूही को ईशानी को देते हुए कहा, लो संभालो अपनी चूहिया को, बाहर गई थी तो इसे भी साथ ले जाती। और कहाँ गायब थी तुम पिछले चार दिनों से? पहले तो इतना लंबा कहीं नहीं गई। तरुण की बातों से साफ था कि ईशानी पहले भी अचानक घर से बिना बताए कहीं चली जाती होगी। ईशानी ने नर्म लहजे में कहा, किसी काम से बाहर गई थी, वहां पर अटक गई थी, इस वजह से नहीं आ पाई। हाँ तो उम्र भर के लिए वहीं पर अटक कर क्यों नहीं रह गई? तरुण बोला और अंदर चला गया। माया भी उसे देखकर मुंह बनाते हुए तरुण के पीछे चली गई थी। वहीं रूही इशिका को देखकर बहुत खुश थी। वो ईशानी से लिपट गई थी और अपनी मासूम आवाज में बोली, मम्मा आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपको बहुत मिस किया। आपको पता है एक आंटी हमारे घर पर आई थी, उन्होंने मेरा ख्याल रखा, वो बहुत अच्छी थी, लेकिन अब दादी और डैड ने उन्हें गुमा दिया, इस वजह से वो गुस्सा कर रहे हैं। रूही जब इशिका के साथ थी तब वो ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन ईशानी के साथ आते ही वो पहले की तरह ढेर सारी बातें करने लगी। रूही के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर इशिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। इशिका ने रूही के फोरहेड पर किस किया और धीरे से कहा, कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ तो कोई तुम पर गुस्सा नहीं करेगा। ईशानी के साथ इशिका ने बहुत कम वक्त बिताया था, पर उसके बातचीत करने का तरीका काफी शांत और धीमा था। वो इशिका जितनी तेज तरार भी नहीं थी, तभी शायद अब तक तरुण और उसकी माँ के अत्याचार सह रही थी। इशिता रूही को लेकर अंदर आ गई थी। उसके अंदर आते ही तरुण ने बेरुखी से कहा, चलो जाओ पैकिंग कर लो, हम वापस दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। इशिका को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ था कि तरुण और उसकी फैमिली इतनी जल्दी वापस जाने को कहेगी। वो जाने के लिए दूसरी तरफ पलटी ही थी कि तभी माया ने पीछे से तेज आवाज में कहा, यहीं रुको। इशिका के कदम वहीं रुक गए थे। माया ने तरुण को इशिका की तरफ इशारा किया। ईशानी की तरह दिखने के लिए इशिका ने अपने बालों को आगे की तरफ कर रखा था। पीछे उसकी कुर्ती का नेक डीप होने की वजह से उसकी नेक पर लव बाइट का एक निशान बना हुआ था जो इशिता के मेकअप से छुपा नहीं पाया था, क्योंकि पहले वो उसे दिखा ही नहीं था। ऐसे कौन से काम करने गई थी जो तुम्हारे पीछे ऐसा निशान बना हुआ है? सच सच बताओ, कहाँ मुकाला कर रही हो? माया ने इशिका के पीछे जाकर उसके बाजू को कसकर दबाते हुए कहा। इशिका ने गहरी सांस ली और फिर तरुण की तरफ देखकर कहा, मैं अपनी जिंदगी अब अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ, जब इसका कहीं और अफेयर हो सकता है तो मैं क्यों इसके लिए लॉयल रहूं? इतना कहकर इशिका ने माया का हाथ झटक दिया और अंदर चली गई। पहली बार तरुण और माया के सामने ईशानी ने आवाज उठाई थी, ये सोचकर वे दोनों हैरान रह गए। माया ने जल्दी से कहा, इस लड़की के कुछ ज्यादा ही पर निकल रहे हैं, आज तक इसने हमारे खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई, संभालो इसे, वरना कहीं ये ना हो कि ये अपनी कंपनी लेकर यहाँ से उड़ जाए। हाँ माँ, देखना तो पड़ेगा, रश्मि के चक्कर में मैंने कभी ईशानी पर ध्यान नहीं दिया, मुझे नहीं पता था कि ये अपनी जुबान कभी खोलेगी भी, मैं इसे अभी सीधा करता हूँ, तरुण हल्के गुस्से में बोला और कमरे के अंदर गया। तरुण ने भले ही ईशानी के ऊपर कितने भी अत्याचार क्यों न किए हों और उसने उसे मारा भी था, लेकिन ईशानी ने कभी उफ तक नहीं की। पर आज वहां ईशानी नहीं, इशिका थी, जो उसका कोई भी अत्याचार नहीं सहने वाली थी। तरुण ने रूही की तरफ देखा और फिर कहा, वहां जाओ। तरुण को देखकर रूही ने डरकर इशिका का हाथ पकड़ लिया था। इशिका ने तरुण की तरफ देखा और सख्त आवाज में कहा, जो भी कहना है इसके सामने कहो। ठीक है, तो तुम अपनी बेटी के सामने मारा खाना चाहती हो तो तुम्हारी चॉइस है, तरुण ने बेरुखी से कहा और वो इशिका के पास आने लगा। अचानक उसने इशिका का गला पकड़ा, तभी इशिका ने उसके पेट में मुक्का मारते हुए उसे दूर धकेल दिया था। तरुण अपना पेट पकड़कर खड़ा था। उसने इशिका की तरफ देखकर कहा, पागल हो गई हो ईशानी, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, जानती हो ना मैं क्या कर सकता हूँ? अब तक तुमने जो करना था कर लिया, वैसे भी तुमने कहा था कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने वाले हो, हमारे पास साथ रहने का एक भी कारण नहीं है, मैं क्यों तुम्हारी बात मानूं और तुम्हारे साथ रहूं? क्यों ना हम तलाक ले लेते हैं, इशिका ने जवाब दिया। उसका पहला मकसद तरुण और ईशानी को इस झूठी शादी से आजाद करवाना था, लेकिन तरुण इतनी आसानी से ईशानी को जाने नहीं दे सकता था, उसे ईशानी की कंपनी चाहिए थी। वो तुरंत नर्म लहजे में बोला, देखो गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हें मॉम से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, वो बड़ी है, बाकी तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो तुम उसके साथ रह सकती हो, हमने पहले ही डिसाइड किया था कि हम रूही के लिए तलाक नहीं लेंगे। किसी भी बच्चे को एक बाप के प्यार और नाम की जरूरत है। तलाक का नाम सुनते ही तरुण की अकल किताने आ गई थी। इससे ईशिका को इतना तो समझ आ गया था कि तरुण इतनी आसानी से ईशानी को तलाक नहीं देगा। ईशानी तलाक की बात वापस ना छेड़े, ये सोचकर तरुण ने कहा, अच्छा ठीक है, जल्दी से पैकिंग कर लो, हमें निकलना भी है। इतना कहकर वो जल्दी से बाहर आ गया था। बाहर आते ही उसने माया से कहा, मैंने उसे समझा दिया है, आज के बाद वो कभी आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं करेगी। माया को मन ही मन संतुष्टि हो रही थी कि तरुण ने ईशानी को सबक सिखा दिया। पैकिंग हो जाने के बाद वे लोग वहां से निकल गए थे, तो वहीं अभिमन्यु भी वसुधा और नक्श के साथ अपने दिल्ली वाले घर पहुंच चुका था। वहां आते ही अभिमन्यु ने नक्श से कहा, जब तक ऑफिस पूरी तरह सेटल नहीं हो जाता है हम लोग घर से ही काम देखेंगे, तुम्हारा रूम ऊपर है। नक्श ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने लगेज के साथ ऊपर चला गया था। उसके जाते ही वसुधा ने कहा, इस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या सच में ये ईशिका से प्यार करता था? इसकी हरकतें देखकर कभी लगा नहीं। छोड़िए ना दादी, हम भी किस बारे में बात कर रहे हैं, प्लीज आप गलती से भी नक्श के सामने ईशिका का जिक्र मत कीजिएगा। मुझे उससे कॉन्टैक्ट करके पूछना होगा कि वो यहाँ पहुंची है या नहीं, अभिमन्यु ने जवाब दिया। उसने वसुधा को उनके कमरे में सेटल किया और बाहर आ गया था।
अभिमन्यु अपने साथ पृथ्वी और निवेदिता को भी लेकर आया था। निवेदिता वसुधा की देखभाल करते हुए उनके पास थी। उनसे अलग हटते ही पृथ्वी ने कहा, मैंने पता किया है, वो लोग गोवा से निकल गए हैं। उस फैमिली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली है तुमने, अभिमन्यु ने पूछा। अभिमन्यु ने ईशानी का सच पृथ्वी को बता दिया था। पृथ्वी ने गंभीर चेहरे के साथ जवाब में कहा, अगर उस लड़की को मर्चेंट फैमिली लेकर गई थी तो फिर वो इतने बुरे हालातों में कैसे थी, ये मुझे समझ नहीं आया। मर्चेंट फैमिली पिछले कई सालों से गायब है। मुझे जहां तक पता चला है उस लड़की को किसी ने अडॉप्ट कर रखा था जिनका सरनेम मर्चेंट था। उन दोनों के मरने के बाद उनकी कंपनी और एक छोटा सा विला उसे मिला था। उसका पति भी उसी कंपनी के सहारे चल रहा है। कुछ भी फिशी नहीं लगा मुझे। पृथ्वी ने सारी इन्फॉर्मेशन अभिमन्यु को बता दी थी। वो मर्चेंट फैमिली से जुड़ी हुई है या फिर उनके लोग उसके पीछे होंगे। ईशिका ने मुझे बताया था कि मरते वक्त आदर्श ने यही कहा था कि ईशानी के जरिए ही वे लोग राधिका और ईशिका तक पहुंचे हैं। ऐसा करो, उस कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करो और हमारी तरफ से उन्हें कोई डील ऑफर करो। इसी बहाने हमें कंपनी के अंदर की खबर भी मिल जाएगी, अभिमन्यु ने पृथ्वी से कहा। लेकिन सर, कंपनी काफी छोटी है। हालांकि कंपनी न्यू एनर्जी पर ही है, पर इतनी छोटी कंपनी के साथ कभी राजवंश फैमिली ने डील नहीं की है, पृथ्वी हिचकिचाते हुए बोला। ठीक है, फिर उसे टेकओवर करने की तैयारी करो, अभिमन्यु ने सख्त आवाज में कहा और अंदर चला गया था। ये उसका फाइनल ऑर्डर था। पृथ्वी उसकी बात मानते हुए ईशानी की कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन जुटाने के लिए लग गया। दूसरी तरफ केशव सिंघानिया वापस दिल्ली लौट चुके थे। राधिका के अचानक गायब होने की वजह से वो भी बहुत परेशान थे। केशव ने पूरे रास्ते किसी से कोई बात नहीं की थी। आने के बाद वो कई घंटे से अपने कमरे में बंद थे, तो अरमान उनके पास पहुंचा। कमरे के अंदर घुसते ही अरमान एक्साइटेड होकर बोला, चाचू आप कब तक खुद को इस तरह कमरे में बंद करके रखेंगे, मेरे पास आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है, चलिए उठिए और काम पर लगिए। केशव ने उदास निगाहों से उसकी तरफ देखा। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, फिलहाल तो एक ही न्यूज मेरे कानों को सुकून दे सकती है और वो है मिसेस सिंघानिया का वापस मिलना। हाँ जानता हूँ, मैंने अपने आदमियों को उन्हें ढूंढने के लिए लगा भी दिया है। क्या आप जानते हैं कि अभिमन्यु राजवंश दिल्ली आया है, वो भी बिजनेस करने के लिए, अरमान ने बताया। उसे सुनते ही केशव की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। हर किसी को अभिमन्यु के दिल्ली आने पर हैरान होना ही था। सब जानते थे कि वो अपनी माँ के चलते कभी दिल्ली नहीं आएगा। ये तो वाकई काफी बड़ी न्यूज है, अगर वो यहाँ आया है तो बात जरूर बड़ी होगी, केशव ने जवाब दिया। हाँ तभी तो आपको बताने के लिए आया था, वैसे उसको मैं एक प्रोजेक्ट ऑफर करने वाला हूँ, इसी बहाने पता चल जाएगा कि वो यहाँ क्यों आया है, अरमान ने बताया, जिस पर केशव ने सहमति जताई। अगले 5 मिनट तक उन दोनों के बीच बिल्कुल चुप्पी छाई रही। अचानक केशव ने अरमान से कहा, तुम्हें याद होगा कि हमें मिसेज राजवंश के फ्यूनरल में एक लड़की मिली थी, उसके पति ने अपनी कंपनी का विजिटिंग कार्ड दिया था, मुझे उस लड़की से मिलना है। अब उससे आपको क्यों मिलना है, मैंने उसकी कंपनी के बारे में पता किया था, वो काफी छोटी कंपनी है, हमारे स्टैंडर्ड के लायक नहीं है। आप उस लड़की में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हैं, अरमान ने बेपरवाही से कहा। हाँ ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे उस लड़की से मिलना है, वो आदर्श के घर पर थी और जिस तरह से वो रिएक्ट कर रही थी मुझे लगता है कि वो लड़की मिसेज राजवंश है। अरमान, उस लड़की की शक्ल मेरी माँ से मिलती है और मुझे सच का पता लगाना है, केशव ने सख्ती से कहा। भले ही ईशिका खुद को मास्क के जरिए कितना भी छुपाने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन उसकी हरकतों ने उसे शक के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया था और अब केशव उसके बारे में पूरा सच पता लगाना चाहता था। फिलहाल के लिए इतना ही। क्या लगता है, केशव ईशिका तक पहुंच पाएगा या उसे इस सच का पता लग पाएगा कि वो उसी की बेटी है? चलिए अगले पार्ट पर मिलते हैं। पढ़कर प्लीज कमेंट कर दीजिएगा और रेटिंग दे दीजिएगा। अगर आपने ऐप अपडेट नहीं किया है तो एक बार अपडेट कर लीजिए, आपको नए फीचर्स मिल जाएंगे और ऐप भी अच्छे से रन करेगा।